जय राधा माधव कुंज बिहारे। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजनरञ्जन जमुना तेरा बनजारी जमुना तीरा बनजारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय ओम विष्णुपाद परम स्वराज आचार्य स्वान गिरी शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय विश्वान त्रिलापृष्ठ भक्ति सिद्धांत सत्य को स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। समाचार तिलहरदास ठाकुर की जय। ग्रंथराश्रम भागवतम की जय। मिताई गौर हरि प्रमानंदे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से सातवां स्कंद अध्याय एक समदर्शी भगवान और श्लोक संख्या 11। कालम चरंतम सृजति ईश आश्रयम् प्रधाना पुंभ्या नरदेव सत्त हत्या कृता कालं चरन्त श्रेयदित इस आश्रयाम् कालं चरन्तं श्रेयति स आश्रया प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्कृता कालं चरन्तं श्रेयति स आश्रया प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्कृता कालं चरन्तं श्रेयति स आश्रयम् प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्कृता और कोई प्राणी एनीबॉडी माताजी लोग कोई माताजी पढ़ सकती हैं कालम समय चरंतम गतिशील सृजति सृष्टि करता है उत्पन्न करता है ईसा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम आश्रयम शरण प्रधान भौतिक शक्ति से भौतिक शक्ति के लिए प्रधान पुंभ्याम तथा जीव के द्वारा जीवगण नरदेव हे मनुष्यों के शासक हे नरदेव सत्य सत्यकृतः सत्य संकल्प हे महाराज परीक्षित भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, काल की सृष्टि करते हैं, जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सकें। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होते हैं, न ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होते हैं। तात्पर्य, किसी को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान काल पर निर्भर करते हैं। वे वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे प्रकृति कार्य करती है और जिससे बद्ध जीव प्रकृति के अधीन आ जाता है। बद्ध जीव तथा प्रकृति दोनों ही काल के अधीन कर्म करते हैं, किंतु भगवान काल की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अधीन नहीं है, क्योंकि काल की सृष्टि भगवान ने की है। अधिक स्पष्ट करने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सृजन, पालन तथा संहार, ये तीनों भगवान की परम इच्छा के अधीन है। भगवत गीता 4:7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सबों के नियंता हैं, अतएव वे जब जब प्रकट होते हैं तो काल की सीमाओं में बंधे नहीं होते। जन्म कर्म चमे दिव्यम। इस श्लोक में कालम चरंतम श्रेति इस आश्रयम पद सूचित करता है कि चाहे सत्वगुण का प्राधान्य हो या रजोगुण अथवा तमोगुण का, यद्यपि भगवान काल के भीतर कार्य करते हैं, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान काल के अधीन है। काल उनके अधीन है, क्योंकि वे इसका सृजन एक निश्चित विधि से कर्म करने के लिए करते हैं और वे कर्म को काल के नियंत्रण में नहीं करते। भौतिक जगत की सृष्टि तो भगवान की एक लीला मात्र है, हर वस्तु उनके पूर्ण नियंत्रण में रहती है। चूंकि सृष्टि का जन्म तब होता है जब रजोगुण प्रधान होता है, अतएव भगवान रजोगुण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक काल की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार वे पालन तथा संहार के लिए आवश्यक कालों का सृजन करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक प्रतिपादित करता है कि भगवान काल की सीमाओं के भीतर नहीं है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारणम्। कृष्ण परम नियामक हैं, सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर आनंद पूर्णता आध्यात्मिक है, अनादि, वे किसी के भी अधीन नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मत्त परतरम नान्यम किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई ही वस्तु कृष्ण से बढ़कर नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के नियंत्रक तथा सृष्टा हैं। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि यह जगत मिथ्या है, अतएव हमें इस मिथ्या की सृष्टि की परवाह नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। किंतु यह सही नहीं है, यहां पर सत्यकृत कहा गया है, अर्थात सत्य परम द्वारा जो भी उत्पन्न किया जाता है वह मिथ्या नहीं कहा जा सकता। सृष्टि का कारण सत्य है, अतएव कारण का प्रकार किस तरह मिथ्या हो सकता है। सत्यकृत शब्द का व्यवहार ही यह प्रतिपादित करने के लिए किया गया है कि भगवान द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु वास्तविक है, मिथ्या नहीं। भले ही सृष्टि क्षणिक हो किंतु यह मिथ्या नहीं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, बहुत जगह है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सातवां स्कंद जो है भागवत महापुराण के दस विषय वस्तुओं में से एक विषय है जिसका नाम है ऊतय। अत्र सर्ग विसर्गश्च अस्थानम पोषण ऊतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये दस विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, उसमें से एक विषय वस्तु है ऊतय। ऊतय का मतलब क्या होता है? कहा गया है ऊतय कर्मवासना। एक होता है कामना, एक होता है कर्म या क्रिया। कामना मन में होता है और उसको प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है कर्म वह क्रिया कहलाता है, वह है ऊतय। ऊतय कर्म वासना, कर्म करने की जो इच्छा है वह ऊतय कहलाता है। जब तक से इच्छा न हो हम लोग कर्म नहीं करते हैं, है ना? खाने का ही कर्म लो, जब तक से खाने की इच्छा न हो, पेट भरा हो तो खाएंगे, छप्पन भोग पड़ा रहेगा नहीं छुएंगे। कर्म तब करेंगे जब इच्छा होगा। तो ऊतय कर्म वासना, कर्म की वासना, कर्म करने की जो इच्छा है वह कहलाता है ऊतय। श्री स्वामी इस सातवें स्कंद का संक्षिप्त में व्याख्या किए हैं, तो हम लोग उसी पर ध्यान देंगे। ये जानना जरूरी है कि सातवें स्कंद में क्या है। स्वभक्त पक्षपातेन तद विपक्ष विदारणम नरसिंहम अद्भुतम वंदे परमानंद विग्रहम। परीक्षित महाराज पोषण के विषय में सुन लिए कि भगवान कैसे पोषण करते हैं। भगवान सबका पोषण करते हैं, एक असुर हो उसका भी पोषण करते हैं, जो उनको मानता है उनका भी भगवान पोषण करते हैं और जो उनको नहीं मानता है उनका भी पोषण करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज देखे कि किस प्रकार से भगवान इंद्र आदि लोगों का, जो कि बहुत गलती एक तरह से किए थे, लेकिन भगवान फिर भी उन लोगों का रक्षा किए, उन लोगों का पक्ष लिए, तो परीक्षित महाराज को डाउट हो गया कि भगवान पक्षपात करते हैं क्या, या हम लोगों में डाउट हो जाए। तो हम लोगों के डाउट को दूर करने के लिए परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं। शुरू कहते हैं, सम प्रिय सुहृदम ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वदति द्विषमो यथा विषमो यथा। कहते हैं भगवान तो सबके लिए बराबर हैं, तो इंद्र आदि लोगों के लिए वे दैत्यों का वध क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि भगवान में भेदभाव है, किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, कोई इसको पुरस्कृत करते हैं, कोई को दंड देते हैं, ऐसा क्यों? कहते संशय, इसमें संशय मुझे हो गया, सुमहान जात, बहुत बड़ा संशय हो गया, आप कृपा करके इसका विच्छेद कीजिए। तो उसी प्रसंग से यहां पर ये अध्याय प्रारंभ हुआ है। तो उसी बात को श्री स्वामी कहते हैं, स्वभक्त पक्षपात न, और लगता है कि अपने भक्त का भगवान पक्षपात कर रहे हैं, अपने भक्तों का साथ दे रहे हैं। तद विपक्ष विदारणम, और जो विपक्षी लोग हैं, दूसरे पक्ष वाले हैं, उनका हृदय विदीर्ण कर रहे हैं, मार रहे हैं। और विदीर्ण करने वाले में कौन है? नरसिंहम अद्भुतम वंदे, प्रथम सर्जन भगवान उत्पन्न हुए नरसिंह देव के रूप में, परमानंद विग्रह, भगवान नरसिंह देव का जो सिर विग्रह है, आनंद प्रदायक है, आनंद देने वाला विग्रह है। उती पंचम दशाध्याय सप्तमे व्रणते धुना, ये उती यानी कर्म वासना को सातवें अध्याय में, सातवें स्कंद में, पंद्रह अध्यायों में, पंचदशम अध्याय, पंद्रह अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। उतेश्च वासना प्रोक्ता तत्कर्मानुसारिणी, और कर्म के अनुसार, वासनाओं के कर्म के अनुसार इसका वर्णन किए हैं। अशुभाच शुभाच इति द्विधांसा हेतु भेदत, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं, एक खराब होते हैं। एक अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, एक खराब कर्म करने वाले, अशुभ और शुभ। एक शुभ कर्म करने वाले होते हैं और एक अशुभ कर्म करने वाले हैं। अब उसी बात को श्री स्वामी कहते हैं, अशुभाम महता कोपाम, जो अशुभ काम करते हैं, जो खराब काम करते हैं, पाप इत्यादि करते हैं दूसरों का, जैसे आजकल के लोग प्रायः हैं, बहुत अशुभ काम हो रहा है आजकल, सर्वत्र आप देख रहे हो कितना अशुभ काम कर हो रहा है। अशुभ क्या है और शुभ क्या है, ये हम कैसे जान सकते हैं? अशुभ क्या है और शुभ क्या है, इसका पहचान क्या है, कौन बता सकते हैं? संसार में हम लोग सोचते हैं जो हमारे लिए अच्छा है अशुभ है, जो हमारे लिए खराब है अशुभ है। जैसे भगवान को प्रार्थना करना, जो कुछ भी ना, ये शुभ काम है हमारे लिए, क्योंकि हम स्वार्थी हैं इसलिए अपने सोचते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं है। श्री स्वामी कहते हैं, अशुभा महता कोपा, जिस काम के करने से भगवान दुखी होते हैं, भगवान अप्रसन्न होते हैं, वह अशुभ कार्य है। और शुभा महद अनुग्रह, और जिससे भगवान का कृपा प्राप्त होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, वह शुभ काम है। तो भगवान प्रसन्न हो और भगवान अप्रसन्न हो, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा जब हम भगवान से प्यार करते हैं। और प्यार का परिचय क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू लव मी देन यू फॉलो मी। प्यार का परिचय है कि यदि कोई प्यार करता है, इसका मतलब कि वह फॉलो करे। जैसे कोई स्त्री, कोई पत्नी अपने पति को प्यार करती है और पति को प्यास लगा है और वो पानी उसे चाहिए, और बड़ा प्रेम से एक गिलास दूध लेकर के जा रही है पति के पास, ये शुभ काम है, ये अशुभ काम है? बेचारा को प्यास लगा है, पानी के बिना मर रहा है, और मैडम दूध लेकर के जा रही है, तो ये अशुभ काम है। लव मी देन फॉलो मी, पानी चाहिए पानी दो, अपने अनुसार मत करो, तो शुभ काम का मतलब कि जो भगवान बतलाए हैं उस रास्ते पर चलना शुभ काम। भगवान गीता में बतलाए हैं क्या करना चाहिए, यद करोश यद स्नासी यद जुहोश यदाफ यद यद तपस्वसी कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो कुछ भी करो मदर्पणम मुझे अर्पण करो, जो कुछ भी खाओ पिए मुझे अर्पण करो, जो भी दान पुण्य करो मेरे लिए करो, ये शुभ काम है। बहुत से ऐसे चीज हैं जो शुभ कहलाते हैं, हरिकथा सुनना ये शुभ है, भगवान का नाम लेना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, ये शुभ काम है। और ऐसे कामों से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे कामों से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सब शुभ और अशुभ का परिभाषा यहां पर बतलाए हैं श्री स्वामी, कहते हैं अशुभा महता कोपाम, जिस काम को करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं वह अशुभ कर्म है। और यदि भगवान अप्रसन्न हो रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ जाएगा। तो आज आंख खोलकर आप लोग देख सकते हो समाज में राष्ट्र में सब जगह सब गड़बड़ चल रहा है, इसका मतलब कि भगवान प्रसन्न नहीं। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भगवान प्रसन्न थे, भगवान श्री राम जब यहां राजा थे उस समय भगवान प्रसन्न थे, नदियों में जल हुआ करता था, पर्वत खनिज पदार्थों से भरा था, गाय के अस्त्रों में दूध हुआ करते थे, वृक्षों में फल लगते थे, ऋतुओं का परिवर्तन समय अनुसार होता था। आजकल क्या हो रहा है देखो, कितना अकाल पड़ गया। बेटा बाप से पहले नहीं मरता था, ये सब शुभ लक्षण है। सब लोग संतुष्ट थे, गरीब भी संतुष्ट था और धनी भी संतुष्ट था। लेकिन आज देखिए न तो गरीब संतुष्ट है और न धनी संतुष्ट है, दोनों असंतुष्ट हैं। और इन सब का कारण है भगवान का कोप। भगवान के कोप के चलते ही अभी पेपर में आप लोग पढ़े होंगे सब जगह कितना खेती नष्ट हो गया है। अभी कुछ दिन पहले भगवान कोप से इतना वर्षा हुआ, इतना पानी आया, कितने लोग मर गए। और यह सब होता है धर्म के ग्लानी होने से, भगवान का आदेश पालन नहीं करने से। जो भाई जो कोई भी अपने जीवन में कल्याण चाहता है, अपना मंगलमय जीवन चाहता है, सुखमय और शांतिमय जीवन चाहता है, उसे चाहिए शुभ कर्म करना। और शुभ कर्म है वह है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये शुभ कर्म है, भगवान का कथा सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान का प्रचार करें, भगवान का चिंतन करें, ये शुभ काम है। और शुभ काम से शुभ महद अनुग्रह, भगवान का कृपा प्राप्त होता है शुभ काम करने से। हम सब लोगों को शुभ काम करना चाहिए जिससे भगवान का कृपा प्राप्त हो। अब कथा प्रारंभ करते हैं, कहते हैं हरे द्वार पयो यद वैकुंठे बसतोरपि चतुसनुर्था विष्णु द्वेषा अशुभ अशुभ वासना। एक समय की बात है कि भगवान नारायण के द्वारपाल, वैकुंठपति के द्वारपाल जय और विजय, जब ब्रह्मा जी के चतुष्कुमार ये लोग गए तो उन लोगों को जाने से मना किए और जिसके चलते उन लोगों को श्राप हुआ और तीन जन उन लोगों को लेना पड़ा, जिसमें से प्रथम जन्म था हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष, दूसरा जन रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन दंतवक्र और शिशुपाल। तो उन्हीं में से प्रथम जन्म को कहते हैं यथा च दैत्य गर्भेपी प्रहलादस्य सत स्थिरा। उन्हीं दैत्य खानदान में यहां जय और विजय जन्म लिए थे, उन्हीं दैत्य के गर्भ से यानी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए प्रहलाद। सत स्थिरा, प्रहलाद कैसे थे? सत स्थिरा, सत्य में स्थिर थे, सत्य संध थे, सत्य में निवास करते थे। नारद अनुग्रह अनुग्रहादासो विष्णु सद भक्ति वासना। ऐसा परिस्थिति उनमें कैसे हुआ? प्रहलाद में सत्य में कैसे स्थिर हुए? कहते हैं नारद अनुग्रह दास, उनमें भगवत भक्ति भगवान के सेवा करने की भावना जो उत्पन्न हुई वह नारद जी के अनुग्रह से, नारद जी के कृपा से हुई। और नारद जी कृपा से उन्हें सद्भक्ति वासना, भगवत भक्ति की वासना उनमें जागृत हुई। यहां जितने एकत्र हैं लोग, सब में सद्भक्ति वासना है, भगवान विष्णु के भक्ति की वासना है, तब यहां बैठे हुए यह वासना अच्छा है। स्वभक्तम च सदा विष्णु विसंतम अपि रक्षति। भगवान विष्णु का इस संकल्प है कि मैं सदैव अपने भक्तों का रक्षा करूंगा, द्वेषियों से भगवान सदैव अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। तृतीय अथ भवे द्वास्थाम, तीसरे स्कंद में भी इसका कुछ वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान बड़ा अवतार लेकर के हिरणाक्ष का वध किए हैं, उसका वर्णन पहले कर किया जा चुका है। अतो मनीषिणा यत्न कार्यो मद अनुग्रह मद अनुग्रहे। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के कथा का वर्णन करने, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु के कथा का वर्णन करने के बाद देखिए, कर्म वासना है, कर्म करने की वासना, इच्छा कर्म करने का, कर्म अकर्म विकर्म सबका। तो पहले विकर्म का मतलब है प्रहलाद जी का, अकर्म का, वो कर्म का कहते हैं। तदवासना च युंजेत कर्म भी शुद्ध चेतस। कर्म कोई करे, कर्म का मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, कर्म का ही दूसरा नाम है धर्म। जो धर्म का पालन करता है वह क्रमशः शुद्ध चेतस, उसकी चेतनाएं शुद्ध होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं चेत मीन्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स माइंड, चेतना मन बुद्धि भावना सेंसेज और हार्ट, ये सब को चित कहा जाता है, ये चेतना कहलाते हैं। तो कर्म करने से यानी धर्म का पालन करने से ये सब शुद्ध होते हैं। सदवासना, वासना होनी चाहिए, कर्म की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? सद सदकर्म वासना, यानी धर्म का हम पालन करें। सदवासना च जुंजेत, जो लोग लगे हुए हैं सदकर्म करने में यानी धर्म का पालन करने में, उनका कर्म भी शुज्यते, उनका जो कर्म है उनको शुद्ध करेगा। और इसी संबंध में आगे वर्णाश्रम का वर्णन किए हैं। वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम में कर्म है, ब्रह्मचारियों का क्या कर्म है या ब्रह्मचारियों का। जब भी धर्म शब्द आया हुआ है, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए हैं उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी। धर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, यानी सदकर्म, करणीय कार्य। तो ब्रह्मचारियों का भी धर्म है जिसे ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है, गृहस्थों का है, वानप्रस्थियों का है, सन्यासियों का है, इन सब का वर्णन भगवान सातवें स्कंद में किया गया है। पंचभी तस्मात् क्रियते धर्म निर्णय, इस प्रकार से पंद्रहवें अध्याय में उसका उपसंहार किया गया है। तत्र तू प्रथम अध्याय हिरण्यकश्यपो सुते विष्णु भक्ते विरोधस्तु विप्रशाप विप्रशाप इष्यते। इस प्रकार से प्रथम अध्याय में अब प्रहलाद का कथा प्रारंभ हो रहा है। तो यह मोटा मोटी पूरे सातवें स्कंद का श्रीपाश्चर्य स्वामी संक्षिप्त में सारांश दिए कि सातवां अध्याय में है क्या। अब आते हैं इस श्लोक पर। चूंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि भगवान में विषमता नहीं है लेकिन दिखाई पड़ता है भक्तों का पक्ष लेते हैं और जो अभक्त हैं उनका वध करते हैं, तो ये तो विषमता दिखाई पड़ती है। भगवान में विषमता कैसे हो सकती है? उनके प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी बड़े गदगद हो गए और उनके प्रश्न का बड़ा ही अनुमोदन किए उनके प्रश्न का। कहते हैं साधु पृष्ठम महाराज हरे चरित अद्भुतम। हे महाराज, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है जिसमें भगवान के चरित्रों का, अद्भुत चरित्र का वर्णन किया गया है। यद भागवत महात्म्यम, भगवान और भक्तों का इसमें महात्म वर्णन किया गया है, सुनने को आएगा। इससे क्या होगा? भगवत भक्ति वर्धनम, भगवान और भक्तों के संबंध में हम सुनेंगे तो हमारे भक्ति में वृद्धि होती है। गियते परम पुण्यम ऋषभि नारदादभि, ऐसे पुण्य कथाओं को नारद आदि ऋषि भी गाते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं। नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथम। अब मैं अपने गुरुदेव या अपने पिता कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम कर करके और यह कथा प्रारंभ कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम यहां पर भगवान के निर्गुणता का वर्णन किए हैं श्लोक संख्या 6 से लेकर के श्लोक संख्या 10 तक में। भगवान की निर्गुणता, निर्गुण का अर्थ होता है भगवान का गुण है लेकिन हम लोगों के समान गुण नहीं है। हम लोग स्पेशल गुण वाले हैं, भगवान का गुण अलग है। हम लोगों का गुण है जिससे हम बनते रहते हैं। गुण का मतलब होता है रस्सी भी। तो हम लोगों का जो गुण है वो हमको बांधता है और भगवान का जो गुण है वह रस्सी को खोलता है। तो उनका भी गुण है और हमारा भी गुण है। हमारा गुण हमको बांधता है और उनका गुण हमको उबारता है। भगवत गीता के सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी गुणमयी माया ऐसी है कि उसे पार करना कठिन है। लेकिन कहते मामे वजे प्रबदंते माया मेताम तरंतिते, लेकिन मेरा ऐसा गुण है कि जो मेरे शरण में आ जाता है उस बंधे को मैं छुड़ा देता हूं। उदा भगवान भले ही बंधे हो, हम जानते हैं दामोदर लीला में भगवान बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी भगवान रस्सी से बंधे हुए थे और नल कुंवर और मणिग्रीव अपने कर्म के बंधन से बंधे हुए थे। तो बंधे हुए भगवान दूसरे बंधे हुए के भी छुड़ा सकते हैं, तो भगवान का यह गुण है छुड़ाना, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया है। प्राय लोग समझते नहीं इस बात को, निराकार, निराकार का मतलब है भगवान का आकार है लेकिन हमारे समान मल मूत्र से भरा हुआ आकार नहीं है। भगवान का आकार है सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद हैं, हम लोग असत अचित और निरानंद से भरे पड़े हैं और भगवान सच्चिदानंद हैं। उन भगवान का वर्णन करने के बाद, उनके गुणों का वर्णन करने के बाद आगे कुछ गुणों का दो श्लोक और है, एक्चुअली एक ही श्लोक है लेकिन प्रभुपाद जी दो कर दिए हैं, 11-12 जो है एक ही श्लोक है, दो नहीं है, मूल टीका में एक ही श्लोक है, प्रभुपाद जी दोनों को दो कर दिए हैं। इसके पीछे एक कारण भी है, बहुत सुंदर कारण है, वो कल के श्लोक बताया जाएगा। आज जो है भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए यहां पर इस श्लोक में कहते हैं भगवान कौन है, कहते हैं कालम चरंतम सृजति ईस आश्रय, भगवान सबके आश्रय हैं, सब कुछ भगवान पर ही डिपेंडेंट है। ईस आश्रय, ईस मतलब भगवान और आश्रय मतलब आश्रय, किनके हैं, कहते हैं प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्कृतम। परीक्षित महाराज को यहां पर बतलाते हुए कि हम लोगों में प्रायः अभिमान हो जाता है, कर्तापन का अभिमान हो जाता है कि मैं करने वाला हूं, इसलिए यहां पर नरदेव कह रहे हैं, यानी जो राजा होता है उसमें कर्तापन का ज्यादा है, जो भी पोजीशन पर होता है उसमें कर्तापन का अभिमान ज्यादा होता है। मैं प्राय उदाहरण दिया करता हूं इलेक्ट्रिक तार का, एक इलेक्ट्रिफाइड तार है और एक नॉन इलेक्ट्रिफाइड तार है, दोनों तार हैं, एक ठंडा है और एक गर्म है, ठंडा को छूओगे कुछ तकलीफ नहीं है लेकिन गर्म को छूओगे तब क्या होगा, बूम, क्योंकि उसमें पावर है, दोनों तार है लेकिन एक में पावर है और एक में पावर नहीं है। तो वैसे ही राजा हो चाहे प्रजा हो, दोनों जन्मे हुए हैं, राजा और प्रजा दोनों जन्मे हुए हैं, वो भी जन्म लिया है, हम भी जन्म लिए हैं, अब उसके पास पावर है, इलेक्ट्रिफाइड है और हम लोग नॉन इलेक्ट्रिफाइड हैं, अंतर इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन जब बिजली का तार समझे कि अरे मेरे चलते सब हो रहा है, उसे मूर्ख है, समझता नहीं कि ये तो पावर हाउस से आ रहा है, कोई पावर हाउस है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यदि पावर हाउस से लाइन कट जाए तो इसमें कोई शक्ति नहीं है। ठीक वैसे ही राजा हो या मंदिर का अधिकारी हो या राजनेता हो, राज्य का अधिकारी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए नरदेव, ये बात समझना चाहिए कि कालम चरंती, जो भी यहां पर मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, जो भी चल रहा है, चलायमान है, कोई कह सकता है नहीं हवा के द्वारा सब चलता है, साइंसिस लोग कहते हैं एयर, बात सही है लेकिन एयर भी चला नहीं पाता है, इसीलिए यहां पर कहते हैं प्रधान पुंभ्याम और प्रधान पुरुष, प्रधान और पुरुष दोनों को चलायमान करता है काल। अब देखिए प्रधान किसे कहते हैं, भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में भगवान कपिल देव माता देहूति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधान का वर्णन किए हैं। माता देहूति प्रश्न की हैं, प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तमम ब्रूहि कारणयोरस्यः सद असद या यद आत्मकम करे कि आप कृपा करके प्रकृति और पुरुष, जीव और आत्मा, जीवात्मा और प्रकृति के संबंध में और इसे कारण के संबंध में हमें बतलाएं। तो भगवान कहते हैं, यत्रगुणम व्यक्तम नित्यम सद असदात्मकम प्रधानम प्रकृति पाहुरह विशेषम विशेषवत्। कहते हैं, जब सृष्टि होती है प्रकृति का दो स्थिति है, एक कहलाता है प्रधान और एक कहलाता है प्रकृति। प्रधान जब ठोस अवस्था में रहता है वो प्रधान कहलाता है, और जब क्रियान्वित होता है तब वह प्रकृति कहलाता है। प्रकृति के तीन गुण, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन चूंकि क्रियान्वित नहीं होता है इसलिए वह प्रधान कहलाता है। और प्रधान किसे कहते हैं, यहां पर प्रधान शब्द आया हुआ है, पंच भी ब्रह्म चतुर भी दस भी तथा एतत् चतुर्विंशति कम गणम प्रधानम इकह विदो। विद्वान लोग इन 24 तत्वों को प्रधान कहते हैं। पंच भी, पृथ्वी, हवा, आकाश, अग्नि और जल। कितने लोग सो रहे हो, हाथ उठाओ। सोने वाले हाथ खड़ा हो जाओ बोल के, क्योंकि सिद्धांत का वर्णन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये अन्य जगह प्राप्त नहीं होगा, वो अन्य भागवत सप्ताह में जाओ सुनने के लिए, तो उनके सिर पर से जाएगा तो आपके सिर पर क्यों नहीं जाएगा। तो इस बात को भागवतम वर्णन सुनिए क्या कहते हैं। कहते पंच भी यानी पृथ्वी, हवा, आकाश, अग्नि और जल, ये पांच महतत्व। और पंच भी यानी ये पांच ज्ञान इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, कितना हो गया 10। और ब्रह्म मतलब कॉन्शसनेस 11। और उसके बाद में नहीं, पंच भी पांच तो अपना तत्व पृथ्वी, हवा, आकाश, 10 इंद्रियां, 15 हो गया। पांच इंद्रियों का विषय, ज्ञान इंद्रियों का विषय, आंख का विषय है दृश्य, कान का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है स्वाद, त्वचा का विषय है स्पर्श और नाक का विषय है गंध। कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद ब्रह्म यानी कॉन्शसनेस 21 हो गया। और 3 सूक्ष्म इंद्रियां यानी मन, बुद्धि और अहंकार, कितने हो गए, तो ये हुए 24 तत्व। एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः एकम विदुः। जब 24 तत्व ठोस रूप में रहते हैं, मैं उदाहरण दिया करता हूं बर्फ का। बर्फ क्या है, जल से बना हुआ है। कभी कभी जल ठोस हो जाता है तो मछली इत्यादि उसमें ये जाते हैं, जब बर्फ जम जाता है सब उसमें रहते हैं। तो प्रधान जो है वो ठोस अवस्था है, प्रकृति का जो ठोस अवस्था है वह कहलाता है प्रधान। अब ठोस अवस्था से सृष्टि नहीं हुआ है और यह जो प्रधान है भगवान कारुण्योन्मुख साई विष्णु इन सब का रचना करते हैं। गर्भोदक साई के पास से प्रधान होता है और गर्भोदक साई विष्णु इस प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं। ब्रह्म संहिता में इसका अच्छा तरह से वर्णन किया गया है। इस पर दृष्टिपात करते हैं और जो दृष्टि है वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। भगवान माया को स्पर्श नहीं करते हैं। रमया रामा कालम शिक्षया, ऐसे है। भगवान अपने चित पोटेंसी के द्वारा यानी लक्ष्मी जी के द्वारा ये जो इस संसार ये जो माया है वो परछाई है। देखिए भगवान का परछाई भी काम करता है। हम लोगों का परछाई काम करेगा है? किसी को परछाई से झपड़ मारो तो लगेगा, परछाई से खिला दो मुंह में आएगा नहीं, लेकिन भगवान का परछाई भी काम करता है। समझ सकते हैं भगवान कितने महान हैं। तो भगवान अपने प्रचोदय दृष्टिपात करते हैं लक्ष्मी जी पर और लक्ष्मी जी के द्वारा ये महतत्व पर दृष्टिपात होता है। लेकिन आश्रय, भगवान आश्रय हैं दोनों के, प्रधान के और पुरुषों के। लेकिन वो दोनों कैसे हैं, ये ठोस अवस्था में है, बर्फ के समान है। तो कालम चरंती, जब दृष्टिपात करते हैं भगवान काल के द्वारा तो 24 तत्व तो ठोस हैं, लेकिन जब ही काल मिलता है तो हो जाता है 25 तत्व। और ये जो 25 तत्व हैं भागवतम में अन्यत्र से महतत्व कहा गया है, जो ब्रह्मा जी को गर्भोदक साई विष्णु प्रदान करते हैं और वहां से वे सृष्टि करते हैं। प्रकृते गुण साम्यस्य निर्विशेष्य मानवी चेष्टायस्त भगवान काल इत्यपलक्षित। हे मानवी, हे मनुपुत्री, भगवान कपिल देव अपने माता से कह रहे हैं, हे मनुपुत्री देवहूति, मानवी मनु की पुत्री, हम लोग मानव हैं, हम मनु के पुत्र हैं और वे मानवी मनु की पुत्री हैं। कहते हैं प्रकृति गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी, उन निर्विशेष रहता है, उसमें कार्य करने की कोई क्षमता नहीं होती है, जड़वत रहता है। लेकिन चेष्टा यस्त भगवान कालम इति उपलक्षित, उपलक्षित भगवान काल से जब दृष्टिपात करते हैं तब उसमें चेष्टा उत्पन्न होता है। और यहां पर आया चरंतम, कर्मान्वित होना, और वहां पर चेष्टा माया हुआ है, दोनों का एक ही अर्थ है। अतः अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो वही समन्वय सत्वानां भगवान आत्माया। इस भगवान अपने आत्ममाया, अपने इंटरनल पोटेंसी के द्वारा एक्सटर्नल पोटेंसी को कार्यान्वित करते हैं, कैसे, काल के द्वारा। तो काल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, सब चीज को मूव करने वाला काल है। काल ऐसा है कि कंगाल को राजा बना देगा और राजा को भी कंगाल बना देगा। इस बात को हम जानते हैं, कहते हैं काल का प्रभाव है, क्या करेंगे। काल का प्रभाव है कि एक दिन यह शरीर जवान था, तीर्थपाद दास याद है ना, एक दिन यह शरीर जवान था, और काल का प्रभाव है कि हम जंप नहीं कर सकते हैं। हमें याद है जब मैं टेंपल कमांडर था, एक दिन था कि एक डिवोटी था कुमार कमलाकांत विश्वास, हम ऊपर से कूद पड़े थे, कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट फ्लोर से कुछ नहीं हुआ। वो नर्मदा स्वामी बेचारा बुड्ढा आदमी मर गया, वो वहां से कूद गया पकड़ने के लिए, वो भाग रहा था, मंदिर सफाई नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। वो भी एक काल था। आज एक स्टेप गिर जाए तो हड्डी टूट जाएगी, है ना। अभी मेरा नहीं, आपका हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ हमारा है। तो काल, काल कुछ भी करा सकता है। काल का ही प्रभाव है कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, दूसरे दिन बन जाना पड़ा। तो काल बड़ा बलवान है। गीता में जब अर्जुन देखे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो भगवान से पूछे ये सब क्या है, तो भगवान कहते हैं कालोऽस्मि, मैं काल हूं, आई एम द टाइम डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, मैं वह समय हूं जो सबको नष्ट करता हूं। कालम चरन्ति सृजति इस आश्रय, भगवान के आश्रय में रह करके ही इस सृजन हुआ है। और भगवान डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ब्रह्मा जी भी सृष्टि नहीं कर सकते हैं, काल ही सृष्टि किया है, इसीलिए ब्रह्मा जी भी काल के अंदर हैं, उनका भी गणना है सहस्त्र युग पर्यंतम। ब्रह्मा जी भी जन्म लेते हैं मरते हैं, तो उनसे भी बढ़कर के काल है, काल उनका भी बाप है। लेकिन भगवान के पास काल का दाल नहीं गलता है, भगवान पर इसका असर नहीं पड़ता है। इसीलिए दशम स्कंद में वर्णन किया गया है कि जब भगवान का आविर्भाव हुआ, दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में वर्णन किया गया कि भगवान का आविर्भाव हुआ तो काल बड़ा प्रसन्न हो गया था। अतः सर्वगुणापेत कालम परम शोभनम, कालम परम शोभनम, काल बड़ा प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया काल, इतना प्रसन्न हो गया कि सब कुछ बदल दिया। जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो अष्टमी कृष्ण पक्ष का अष्टमी था, लेकिन आप दशम स्कंद में पढ़ेंगे आप लोग, सब कुछ बदल गया था, वह शुक्ल पक्ष का अष्टमी हो गया था, यानी पूर्णिमा हो गया था, चंद्रवंश भगवान आए थे तो पूर्ण चंद्र उदित हो चुके थे, कमल खिल गए थे, कमल सूर्य को देखकर खिलते हैं, चंद्रमा को देखकर के नहीं, नदी तालाब नद्ध प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहुश्रित, नदी हृदा प्रसन्न सलिला बिल्कुल स्वच्छ हो गए थे। जन्माष्टमी के समय नदी और तालाब के पानी स्वच्छ नहीं होते हैं, गंदे होते हैं, लेकिन स्वच्छ हो गए थे। पक्षियां चहचहा रही थी, काल परिवर्तित हो गया, काल प्रसन्न हो गया कि भगवान आज आए हुए हैं, भगवान काल को प्रसन्न करने के लिए आए थे। तो भगवान काल के अंतर्गत नहीं है, काल उनके अंतर्गत है, उनके यहां काल का दाल नहीं गलता है। भगवान सब कुछ को नष्ट करते हैं लेकिन काल कभी नष्ट नहीं होता है, वो भगवान का ही प्रतीक है। भगवत गीता में पांच विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। इसमें से ईश्वर, जीव और काल ये तीन शाश्वत हैं। प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन कर्म जो है उसको खत्म किया, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, कर्म को खत्म कर सकते हैं। तो काल शाश्वत है, कहते हैं कालम चरंत सृजति इस आश्रयम प्रधान पुरुष नरदेव सत्कृतम। हे नरदेव, हे महाराज परिचित, सत्य संकल्प भगवान काल के द्वारा प्रचोदित जब करते हैं तो वह प्रधान कार्यान्वित हो जाता है। जब प्रधान कार्यान्वित होता है तब वासना उत्पन्न होती है, और जब वासना उत्पन्न होती है तब हम लोग कर्म करते हैं। तो इस अध्याय, इस पूरे स्कंद का यह श्लोक एक तरह से देखा जाए तो सारांश है। इसलिए प्रभुपाद जी इसको अलग कर दिए हैं। वासना उत्पन्न यहीं पर होती है, यही श्लोक बतलाया है। प्रधान पुंभ्याम सत्यकृतम, भगवान सक्त सत्य संकल्प हैं, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यात्मजोनी हितम च सत्य, भगवान त्रिसत्यम हैं, वो जानते हैं कब क्या करना चाहिए। तो सत्य संकल्प केवल कल्पना मात्र से, प्रभुपाद जी सत्य कृतम का ही व्याख्या करते हुए कहते हैं कैसे मायावादी लोग इस संसार को सत्य नहीं मानते, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या कहते हैं। यदि जगत मिथ्या है तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम जो बोल रहे हो सत्य कैसे हो जाएगा, वही तो मिथ्या होगा ना, क्योंकि तुम जगत का है। हम लोग जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं, हम जगत को सत्य मानते हैं, लेकिन परिवर्तनशील मानते हैं। जो ऐसा कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, दो झापड़ मारो। यदि वो गुस्सा करता है तो अरे भाई गुस्सा क्यों करते हो, मिथ्या है ये तो, मिथ्या है गुस्सा क्यों करते हो, झापड़ लगा जब दर्द कर रहा मतलब मिथ्या नहीं है, है? कुछ काम कर रहा है। तो जगत मिथ्या नहीं है, कैसे मिथ्या हो सकता है, सत्य कृतम, सत्य के द्वारा यह कृत है, सत्य के द्वारा यह बनाया गया है, तो मिथ्या कैसे हो सकता है। सत्य असत्य का सृष्टि नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण अच्छा तरह से दिए हैं, जैसे हम सो रहे हैं रसगुल्ला खा रहे हैं, सोते समय रसगुल्ला कितने लोग खाए हो, कुछ मिठाई कितने लोग खाए हो सोते समय, बरात रात में गए थे शादी उदय में तो खाते हो ना, कई मिठाई खाते हैं, रसगुल्ला दिखाई पड़ता है, उसका टेस्ट भी आता है और सुबह उतर कुछ भी नहीं है, तो क्या मिथ्या हो गया, मिथ्या नहीं है ये है। जब सो रहे थे सपना में रसगुल्ला खा रहे थे, लेकिन अभी नहीं, परिवर्तन हो गया है, वही टेस्ट था, सब कुछ वही था, मिथ्या कैसे हो गया। यदि वह मिथ्या हो सकता है तो यहां पर पत्नी पुत्र समाज ये सब मिथ्या है, फिर क्यों उनका सेवा कर रहे हो, फिर राष्ट्र का सेवा क्यों कर रहे हो, दरिद्र नारायण का सेवा क्यों कर रहे हो, यही लोग कहते हैं और कान उल्टा करते हैं, इसका मतलब लोग समझते नहीं इस बात को। तो सत्कृतम भगवान के द्वारा यह प्रकृति प्रदत्त है, उनके संकल्प से काल के आश्रय में प्रधान और पुरुष यानी जीव और प्रकृति काम कर लेते हैं। तो जब काल रूपी तत्व महातत्व में जुड़ जाता है तब यह कहलाता है प्रकृति, तब प्रकृति के तीन गुण सत्गुण रजगुण काम करना शुरू करते हैं। पहले भी रहते हैं लेकिन फ्रोजन अवस्था में रहते हैं, बाद में काम करना शुरू करते हैं। समराइज दिस वर्स कि भगवान काल के द्वारा सब कुछ को क्रियान्वित करते हैं, प्रकृति और जीव को भी, लेकिन भगवान काल के अधीन नहीं है, वे कालातीत हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, माइक माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो लॉजिक बताया कि प्रधान जागृत होता है और फिर वासना उत्पन्न होती है, वो थोड़ा समझा नहीं, मतलब जो वासनाएं हमारे में उत्पन्न होती है वो प्रधान के वजह से ही होती है, मतलब प्रधान मतलब भगवान ही है, तो वो थोड़ा समझा नहीं।
काल के प्रधान मतलब फ्रोजन अवस्था, सब कुछ रहते हुए भी कार्यान्वित नहीं होता है, क्रिया उसमें नहीं होती है, स्टोन के समान है, और जब काल के द्वारा भगवान दृष्टिपात करते हैं तो पिघलता है, तब प्रकृति होता है, और प्रकृति में कर्म होता है, प्रकृति में वासना उत्पन्न होती है। आप बेहोश पड़ जाओ, एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है, कुछ होगा, कुछ फीलिंग नहीं होगा। अरे आप बेहोश पड़े हुए हैं, कितना भूख लगा है, बेहोश, भूख के मारे बेहोश हो जाओ और कोई छप्पन भोग वहां पर ला दे, गंध भी नहीं आएगा, जब होश में आओगे तब तो देखो अरे खाने का चीज है, चलो भूख लगाया खाऊं। तो होश आता है काल के चलते, और जब होश आएगा तब वासना उत्पन्न होगी। जब होश आएगा अरे भूख लगाया खाना चाहिए, तो वासना उत्पन्न होगी। जब वासना उत्पन्न होगी तो कर्म करोगे, खाओगे। यस, पीछे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप बोले हमारा गुण हमें बांधता है, तो हम तो प्रभु जी भगवान का अंश है, तो फिर हम भगवान का गुण हमारा गुण में डिफरेंस कैसे है? हमारा
यदि
गुण हमें
भगवान का अंश हो जाओगे, जिस दिन इस बात को समझ लोगे तब नैया पार हो गई। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुकनाए। जिस दिन यह विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण का सेवा करना प्रारंभ करें, फिर दुख नहीं होगा। अभी तो हम मान लिए हैं, गीता पढ़ना समझना और कार्यान्वित करना, ये तीन काम है। तो गीता हम कई एक बार पढ़ लिए हैं, लेकिन समझे कहां है हम लोग? गीता समझेंगे तो फॉलो करेंगे। जैसे अर्जुन समझ गए, कहते नष्ट मोह स्मृति लब्धवा तत्प्रसाद अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यह है समझदारी। हम लोग गीता समझे नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं, तो समझ जाएंगे कि हम कृष्ण के अंश हैं, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। हम भूल गए हैं, तो पूरा यह प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, इसको रिवाइव करने के लिए है, समझने के लिए है। लगे रहो, नाम जप करते रहो, कथा सुनते रहो, एक दिन समझ में आ जाएगा। और जब यह समझ में आ जाएगा तो उस दिन मुक्त हो जाओगे, फिर बंधन में नहीं रहोगे। अभी तक समझदारी नहीं है। जितना समझदारी आती है उतना बंधन से मुक्ति हो जाती है। अब समझदारी आके लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मुक्ति हो गई है ना। यहां बनता है लहसुन प्याज तो नाक मत करते हैं, अभी तो कितने भक्तों को वोमिट होने लगता है। मांस नहीं खाना चाहिए, समझदारी हो जाए ठीक। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम सुन लिए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं कि जीव कृष्ण का है। प्रभु यू आर नॉट दिस बॉडी योर स्पिरिट सोल, ठीक है वो ज्ञान है, लेकिन विज्ञान के रूप में प्रणीत नहीं हुआ है। और कोई प्रश्न? यस, गिव माइक, माइक दे दो, माइक दो। ऑन ऑन माइक बंद मत करो ना, उन्हें रहने दो।
हरे कृष्णा, हम लोगों को कामना है वो कहां से उद्भव होता है, उसका मूल क्या है?
आप तो जानते हो, जीव में जब ही संसार को भोगने की वासना उत्पन्न होती है तो वासना ही क्रियान्वित होकर के, जो वासना है वही तो कामना, तो अनंत काल से है हम में। भगवान से विमुख होकर के संसार को भोगने की जो कामना उत्पन्न हो गई है वही मल्टीप्लाई हुई है, एक नहीं अनेक रूपों में। तो जब भगवान, जब जिस दिन से हम जीव बन गए, जिस दिन से जीव हो गए उसी दिन से वासना उत्पन्न हो गई। जब हम आत्मा थे तो शुद्ध थे, जिस दिन जन्म ले लिए, देह ग्रहण किए।
हरे कृष्णा प्रभु, आपने अभी शुभ और अशुभ के बारे में बताया कि मतलब जब भगवान हमारे जो कार्य से प्रसन्न होते हैं शुभ होता है, और जो नहीं मतलब हम उनके विरुद्ध कर रहे हैं तो अशुभ होता है। तो उसमें जब आपने बताया कि भगवान राम का राज्य था तो शुभ था, भगवान प्रसन्न थे, तो भगवान और कृष्ण स्वयं ही भगवान है परम पुरुष
नहीं? तो भगवान राम आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक व्यक्ति हम लोगों के समान कार्य कर रहे थे, भगवान के रूप में नहीं। कृष्ण तो पट्टे थे ना, तो हमेशा कहते हम सर्वत्र प्रभु, मैं सबका मालिक हूँ। भगवान राम कभी ऐसा बोले हैं? कभी नहीं बोले, वो मर्यादा के रूप में आए।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु, पूरे काल को और अपने पूर्व जन्म की क्रियाओं को कैसे समझे? मतलब जो कुछ भी हो रहा है, कई बोलते हैं
काल ही ढोकर के लाता है। पूर्व जन्म में जो भी आप कर्म किए हैं ना, उसको ढो करके लाने का काम काल करता है, काल ही इकट्ठा करके रखता है। हम लोग यहां बैठे हैं अभी, काल ही लाया हम लोगों को, एक काल आएगा तो चले जाएगा। लगा
जैसे मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था तो प्रभुपाद जी बताते कि जो पांच पांडव जो जो कुछ भी मतलब सफरिंग कर रहे थे अपने पूर्व जन्म की क्रियाओं के अनुसार नहीं कर रहे थे, इट इज बिकॉज ऑफ द काल, काल कृतम, तो काल की वजह से सफर कर रहे थे। तो कैसे समझे काल की वजह से हो रहा है, पूर्व जन्म की वजह से हो रहा है?
क्या क्या
कैसे समझे कि जो कुछ हो रहा है वो काल की वजह से हो रहा है और पूर्व जन्म की वजह से हो रहा
है? नहीं नहीं, जो कुछ भी होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म से होता है, काल तो केवल ढोकर लाता है, काल वाहन का काम करता है, वो ढो करके लाता है। पूर्व जन्म को हम भूल गए हैं, हम नहीं करना चाहते, जो पूर्व जन्म रखे हैं पाप कर करके वो हम भोगना नहीं चाहते हैं, लेकिन काल कहता है छोड़ूंगा नहीं तुमको, ये तुम्हारा है, तुम ही लेकर अपने पास रखो। काल ढोने का काम करता है, काल वाहन है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।